एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज के ग्रंथसार में हम एक ऐसे उपन्यास पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में काफी चर्चा बटोरी है। अमेरिकी लेखिका बारबरा किंगसॉल्वर का उपन्यास डेमन कॉपरहेड।
जी हाँ, और सिर्फ चर्चा ही नहीं, इसे तो बड़े साहित्यिक सम्मान भी मिले हैं। 2022 में ये प्रकाशित हुआ और 2023 में इसे फिक्शन के लिए पुलित्जर प्राइज मिला और साथ ही प्रतिष्ठित विमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन भी। तो मतलब ये अपने आप में ही बड़ी बात है।
बिल्कुल सही। और लेखिका बारबरा किंगसॉल्वर, उनका खुद का जुड़ाव ग्रामीण केंटकी से है, तो वो एपालाचिया क्षेत्र को, वहां के जीवन को, चुनौतियों को बहुत गहराई और सहानुभूति से लिखती हैं।
हाँ, उनका लेखन अक्सर सामाजिक न्याय, पर्यावरण और जो समुदाय हाशिए पर है उनकी आवाज़ बनता है।
और डेमन कॉपरहेड भी उसी कड़ी में है। ये चार्ल्स डिकिन्स के मशहूर उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड का एक तरह से आधुनिक रूप है।
जी, लेकिन कहानी लंदन में नहीं, आज के दक्षिणी एपालाचिया के ग्रामीण अमेरिका में सेट है।
और यही ये उपन्यास और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। डिकिन्स की कहानी को आज के अमेरिका में देखना, खासकर वो एपालाचिया जो ओपियोइड संकट से जूझ रहा है, फॉस्टर केयर सिस्टम की दिक्कतों से जूझ रहा है, किंगसॉल्वर इस तुलना से क्या कहना चाह रही हैं? क्या वो ये बता रही हैं कि अन्याय के तरीके बदल गए हैं पर अन्याय खत्म नहीं हुआ है?
बिल्कुल, आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। डेमन की कहानी के जरिए हम देखेंगे कि उपन्यास की कहानी क्या है, डेमन का सफर कैसा रहा और जो मुख्य विषय हैं जैसे सिस्टम का फेल होना, नशे का संकट और मुश्किलों में भी टिके रहने का जज्बा।
तो चलिए कहानी के नायक डेमन से मिलते हैं, डेमन फील्ड्स, जिसे बाद में दुनिया डेमन कॉपरहेड के नाम से जानेगी।
इसका जन्म होता है वर्जीनिया के ली काउंटी में, एक सिंगल वाइड ट्रेलर में। मतलब बहुत ही साधारण शुरुआत। जन्म से पहले ही पिता की मौत हो चुकी है, माँ अकेली है, जवान है और जिंदगी की मुश्किलों के साथ साथ नशे की लत से भी लड़ रही है।
और ये नाम कॉपरहेड, ये सिर्फ बालों के रंग की वजह से है, तांबे जैसे लाल बाल।
हाँ, बाल तो पिता की तरह तांबे के तार जैसे लाल थे, लेकिन ये नाम उसकी पहचान भी बन जाता है। वो लड़ाकू है, जिद्दी है, शायद हालात ही उसे ऐसा बना देते हैं। शुरुआती जिंदगी गरीबी में है, माँ का प्यार है हाँ, पर वो भी पूरा नहीं है। मतलब उसमें कमियां हैं, एक अधूरापन है।
लेकिन उसे अपनेपन का, थोड़ी स्थिरता का अनुभव भी तो होता है।
जी बिल्कुल। पड़ोसी पेगॉट परिवार, नैन्स, मिस्टर पेगॉट, हैमर केली, एमी, ये लोग उसके लिए एक तरह से परिवार जैसे हैं। शायद यही उसके जीवन का एकमात्र वक्त था जहां उसे एक ठीक ठाक प्यार भरा परिवार मिला, भले ही खून का रिश्ता ना हो।
ये पाया हुआ परिवार यानी फाउंड फैमिली वाली बात काफी अहम है, खासकर एपालाचिया जैसे इलाके में जिसे बाहरी दुनिया अक्सर ठीक से समझती नहीं, स्टीरियोटाइप बना लेती है।
हाँ, किंगसॉल्वर ने वो जो हिलबिली वाली घिसी पिटी सोच है ना, उसको तोड़ने की कोशिश की है। वो उस इलाके के लोगों की अंदरूनी ताकत, उनके जुड़ाव, उनकी गरिमा को दिखाती हैं।
और डेमन को भी इसका एहसास होता है कि बाहर की दुनिया उन्हें कैसे देखती है।
हाँ, बहुत जल्दी उसे लगने लगता है कि टीवी पर दिखने वाले लोग, बाहरी दुनिया उन्हें और उनके जैसे लोगों को कैसे देखती है। तिरस्कार से, जैसे वो किसी काम के नहीं, एक तरह की अदृश्यता।
पेगॉट परिवार उसे जड़ों का एहसास देता है, समुदाय की अच्छाई का प्रतीक बनता है, पर ये स्थिरता ज्यादा टिकती नहीं।
अच्छा, क्या होता है?
डेमन की जिंदगी में एक बड़ा तूफान तब आता है जब उसकी माँ स्टोनर नाम के एक हिंसक आदमी से शादी कर लेती है।
स्टोनर, ये नाम सुनते ही डिकिन्स के मिस्टर मर्डस्टोन की याद आती है।
बिल्कुल,
वो मर्डस्टोन का ही आधुनिक रूप है और किंगसॉल्वर शायद यही दिखा रही हैं कि क्रूरता का चेहरा बदल सकता है पर उसका असर वैसा ही रहता है। स्टोनर के घर में आने से डेमन का बचपन खत्म हो जाता है, घर में डर और हिंसा का माहौल बन जाता है। वो ना सिर्फ डेमन को सताता है बल्कि उसकी माँ को भी पूरी तरह तोड़ देता है। वो फिर से नशे में डूब जाती है।
बहुत दुखद है।
स्टोनर उस जहरीली मर्दानगी और निराशा से पैदा हुई क्रूरता का प्रतीक है। और फिर एक दिन माँ का ओवरडोज हो जाता है, जान बच जाती है
पर सोशल सर्विसेज आ जाती होंगी।
हाँ, DSS यानी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज,
बिल्कुल,
वो दखल देते हैं और डेमन को उसकी माँ से दूर ले जाया जाता है। यहीं से उसकी फॉस्टर केयर की तकलीफदेह यात्रा शुरू होती है।
फॉस्टर केयर सिस्टम, जिसे बच्चों की मदद के लिए होना चाहिए, वो डेमन के लिए एक और मुसीबत बन जाता है।
ये सिस्टम की नाकामी का उसका पहला तजुर्बा था। है ना? बिल्कुल, ये सिस्टम उसके लिए सुरक्षा नहीं बल्कि मुसीबतों का एक और जाल बन जाता है। पहली जगह उसे क्रिक्सन परिवार के तंबाकू फार्म पर भेजा जाता है। वो घर नहीं था, वो बाल मजदूरी का अड्डा था। उससे जानवरों की तरह काम लिया जाता, भूखा रखा जाता, उसकी कोई परवाह नहीं की जाती थी। और ये सिलसिला चलता रहता है, एक घर से दूसरे घर। कहीं क्रिक्सन जैसी क्रूरता, कहीं मैककॉब परिवार जैसी ठंडी उदासीनता और भूख। एक बार मिस्टर गॉली के साथ थोड़ी उम्मीद जगती है, पर वो भी जल्दी खत्म हो जाती है।
तो उसके मन में ये बात बैठ गई होगी कि कुछ भी अच्छा ज्यादा देर टिकता नहीं।
हाँ बिल्कुल, उसके मन में ये पक्का हो गया कि अच्छी चीजें अगर मिलती भी है तो बस कुछ वक्त के लिए,
इस अंधेरे में कोई रोशनी, कोई दोस्त।
हाँ, क्रिक्सन फार्म पर ही उसकी मुलाकात मैगेट से होती है। वो उसका सबसे अच्छा दोस्त बनता है। मैगेट भी डिकेंस के एक किरदार जेम्स स्टेफोर्ड जैसा है, थोड़ा एपलाचियन अंदाज में।
अच्छा,
दोनों बच्चे एक जैसे दुख से जुड़े हैं, सिस्टम के सताए हुए, अवांछित महसूस करने वाले। मैगेट तेज है, थोड़ा अजीब है, पर वफादार है। वो उन एपलाचियन युवाओं का प्रतीक है जिनमें हुनर तो है पर सिस्टम उन्हें उभरने नहीं देता।
लेकिन ये दोस्ती भी शायद
नहीं टिकती। और इसी उथल पुथल के बीच डेमन को सबसे बुरी खबर मिलती है।
क्या?
उसकी माँ की मौत हो गई है एक जानलेवा ओवरडोज से।
ओ नहीं, अब तो वो बिल्कुल अकेला रह गया।
हाँ, दुनिया में बिल्कुल अकेला। जैसा वो खुद सोचता है, बच्चा होना एक भयानक बात है, एक ऐसी जिंदगी का इंचार्ज होना जिसे चलाना तुम्हें आता ही नहीं पर तुम्हें करना पड़ता है।
पूरी तरह अकेला और सिस्टम के भरोसे, यहाँ से कहाँ जाता है डेमन? हार मान लेता है?
नहीं, उसके अंदर का वो कॉपरहेड, वो लड़ने वाला जज्बा अब भी बाकी है। वो एक कोशिश करता है। फॉस्टर केयर से भाग निकलता है और अपनी दादी को ढूंढ लेता है जिसके बारे में सिर्फ सुना था।
अच्छा, दादी उसकी मदद करती हैं?
हाँ, दादी खुद भी जिंदगी की मारी हैं, पर वो डेमन में कुछ देखती हैं। वो उसे लोकल हाई स्कूल के फुटबॉल कोच, कोच विनफील्ड से मिलवाती हैं।
कोच विनफील्ड? क्या ये डेमन के लिए एक नई शुरुआत है?
कोच विनफील्ड डेमन की खेल प्रतिभा को तुरंत पहचान लेते हैं। वो देखते हैं कि लड़के में दम है। डेमन उनके अंडर में स्कूल टीम का स्टार बन जाता है, डेमन कॉपरहेड।
तो पहली बार उसे पहचान मिलती है, इज्जत मिलती है।
हाँ बिल्कुल, पहली बार उसे लगता है कि उसका कोई मकसद है। लोग उसे सराह रहे हैं, उसे अपनेपन का एहसास होता है। वो कोच और उनके परिवार के साथ रहने लगता है।
ये तो उसके जीवन का एक अच्छा दौर लगता है। लेकिन क्या कोच विनफील्ड सिर्फ उसकी मदद करना चाहते हैं या इसमें भी कोई पेंच है? आपने उनकी तुलना डिकेंस के क्रिकल से की थी जो शोषक था।
आपकी शंका ठीक है, यहाँ उम्मीद तो है पर शोषण का खतरा भी है। कोच विनफील्ड डेमन की देखभाल करते हैं, हाँ, लेकिन ये साफ है कि उनकी पहली प्राथमिकता डेमन की भलाई नहीं बल्कि उसकी एथलेटिक काबिलियत है, जिससे टीम जीते, उनका नाम हो।
ये तो अक्सर होता है।
लेकिन इसी घर में डेमन को एक सच्ची दोस्त मिलती है, कोच की बेटी एंगस।
एंगस,
हाँ एंगस, जो डिकेंस की एग्नेस विकफील्ड की तरह है, समझदार, सोचने वाली, नैतिक रूप से मजबूत।
वो डेमन को सिर्फ एक फुटबॉल स्टार या एक मुश्किल अतीत वाले लड़की की तरह नहीं देखती, वो उसे एक इंसान के तौर पर देखती है।
ये बहुत जरूरी रहा होगा डेमन के लिए, कोई जो उसे सच में देखे।
जी हाँ, वो डेमन के जीवन में एक स्थिर, सही रास्ता दिखाने वाली ताकत बनती है, उसकी अंतरात्मा की आवाज जैसी।
लेकिन ये सुनहरा दौर डेमन की किस्मत में अच्छे दौर ज्यादा टिकते नहीं। क्या ये भी लंबा चल पाता है?
नहीं, दुर्भाग्य से नहीं। एक बहुत जरूरी फुटबॉल मैच में डेमन के घुटने में भयानक चोट लगती है, बहुत गंभीर चोट।
ओह,
ये चोट सिर्फ घुटना नहीं तोड़ती, उसके सारे सपने तोड़ देती है। कॉलेज स्कॉलरशिप का सपना, इस जगह से बाहर निकलने का सपना, सब खत्म। जिस्मानी दर्द तो है ही, पर सपनों के टूटने का दर्द, भविष्य का अंधेरा, वो ज्यादा भयानक है। और यहीं से कहानी उस तरफ मुड़ती है जिसने असल जिंदगी में भी अपलेचिया और पूरे अमेरिका में तबाही मचाई है, ओपियोइड संकट।
हाँ, असहनीय दर्द से राहत के नाम पर डॉक्टर डेमन को एक ताकतवर पेन किलर देते हैं, ऑक्सीकॉन्टिन। और ये उपन्यास का एक बहुत ही मार्मिक और अहम हिस्सा है। किंग सॉल्वर दिखाती है कि ये गोली सिर्फ जिस्मानी दर्द कम नहीं करती, ये डेमन के अंदर के जो गहरे जख्म हैं, अकेलापन, गुस्सा, निराशा, उन्हें भी सुन्न कर देती है।
एक तरह का भावनात्मक एनेस्थीसिया।
बिल्कुल, जैसा डेमन खुद बाद में सोचता है, ऑक्सीकॉन्टिन की बात यह है कि ये आपको किसी भी चीज की परवाह नहीं करने देता, जो सुनने में बुरा लगता है, पर जब आप 15 साल के हो और सब कुछ दुखता हो तो परवाह न करना ही शायद वो चीज है जिसकी आपको जरूरत है।
और लत लगने में देर नहीं लगती होगी?
बिल्कुल नहीं, बहुत तेजी से लत लग जाती है और उसकी जिंदगी एक बार फिर ढलान पर लुढ़कने लगती है।
ये उपन्यास सिर्फ कहानी नहीं कहता, ये ओपियोइड महामारी के कारणों को भी खुरेदता है, कैसे दवा कंपनियों ने मुनाफे के लिए इन दवाओं के खतरे को छुपाया।
हाँ, और कैसे डॉक्टरों ने भी जाने अनजाने इसे आसान बनाया, और कैसे इसने खासकर उन समुदायों को निशाना बनाया जो पहले से ही कमजोर थे।
किंग सॉल्वर नशे को किसी की नैतिक कमजोरी की तरह नहीं दिखाती।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो इसे एक सामाजिक और स्वास्थ्य समस्या के रूप में दिखाती हैं, जिसे लालच और नजरअंदाजी ने पैदा किया।
नशे की गिरफ्त में आने के बाद डेमन का क्या होता है?
जीवन और बिखर जाता है। वो कुछ समय के लिए पेगॉट्स के पास लौटता भी है, वो लोग उसे फिर अपनाने को तैयार है, पर नशे की पकड़ इतनी मजबूत है कि वो वहां टिक नहीं पाता, घर छोड़ देता है, और यहीं उसकी मुलाकात होती है डोरी से।
डोरी डिकिंस की डोरा स्पिनलो की याद दिलाती है।
हाँ, सुंदर है पर अंदर से टूटी हुई, अमीर घर से है पर वो भी नशे की आदी है।
डेमन और डोरी दो टूटे हुए लोग, क्या उनका रिश्ता उन्हें संभाल पाता है?
उनका रिश्ता बहुत गहरा होता है, पर सेहतमंद नहीं होता।
अच्छा।
ये दर्द पर, भागने के सपनों पर और नशे के लत पर टिका होता है। वो एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, जिसे कोडिपेंडेंट कहते हैं। मतलब वो एक दूसरे की कमजोरियों को, नशे को बढ़ावा देते हैं बजाय बाहर निकालने के। सपने तो देखते हैं अच्छी जिंदगी के, कहीं दूर जाने के, पर नशे का दलदल उन्हें बाहर निकलने नहीं देता। अपनी लत के लिए पैसे जुटाने के लिए डेमन एक शातिर आदमी यूहॉल के लिए छोटे मोटे अपराध भी करने लगता है। ये यूहॉल डिकिंस के उरिया हीप जैसा है।
यहाँ भी किंग्सॉल्वर नशे की दुनिया को बिना किसी लाग लपेट के दिखाती होंगे।
बिल्कुल, कोई ग्लैमर नहीं, सिर्फ बेरंग सच्चाई, बीमारी, गिरावट, चोरी, झूठ, खुद को खो देना।
इस रास्ते का अंत तो सिर्फ तबाही ही हो सकता है।
और तबाही आती है अपने सबसे भयानक रूप में। एक दिन डेमन घर आता है तो डोरी को मृत पाता है, फेंटानिल मिली हेरोइन का ओवरडोज।
हे भगवान, ये तो डेमन के लिए सब कुछ खत्म होने जैसा होगा।
ये शायद उसकी जिंदगी का सबसे निचला पॉइंट है, एक ऐसी त्रासदी जो उसे पूरी तरह तोड़ देती है।
डोरी का अंत ये नशे की भयानकता का प्रतीक बन जाता है ना, कि कैसे ये सब कुछ निगल जाता है, भविष्य, रिश्ते, जिंदगी।
जी, ये प्यार और नशे के टकराव को भी दिखाता है। शायद वो लाइन यही सबसे ज्यादा सच लगती है, अकेला प्यार काफी नहीं है, पर ये जरूरी फिर भी है।
प्यार डोरी को बचा नहीं सका, पर शायद प्यार की याद डेमन को आगे बढ़ने में मदद करे।
डोरी की मौत के बाद डेमन अपराध बोध और दुख में डूब जाता है। वो सब छोड़कर तट की ओर भाग जाता है, समंदर किनारे, जहां वो और डोरी जाने के सपने देखते थे।
और वहां?
वहां अकेलेपन और नशे में वो लगभग मर ही जाता है, एक और ओवरडोज। लेकिन किस्मत एक और मौका देती है, एक अजनबी उसे बचा लेता है। इस बार कोच विनफील्ड और एंगस उसे ढूंढते हैं और उसकी मदद करते हैं। आखिरकार डेमन एक रिहैब सेंटर में भर्ती होता है।
रिहैब यानी मुक्ति की राह की शुरुआत, पर यह आसान नहीं होता होगा बिना नशे के अपने अतीत का सामना करना।
बिना नशे के सहारे के।
लेकिन यहीं इसी मुश्किल वक्त में वो अपने पुराने शौक को फिर से ढूंढता है, ड्राइंग।
ड्राइंग, बचपन में वो सुपर हीरो बनाता था।
हाँ, तब शायद वो न्याय की एक काल्पनिक चाह थी, अब कला उसके लिए थेरेपी बन जाती है। वो अपनी जिंदगी की कहानी को, अपने अनुभवों को कागज पर उतारने लगता है।
तो यही कला, कहानी और पहचान का थीम बहुत मजबूती से सामने आता है। अपनी कहानी को फिर से कहना, क्या ये डेमन के लिए आजादी का रास्ता बनता है?
बिल्कुल, ये सिर्फ थेरेपी नहीं है, ये अपने वजूद पर दावा करने जैसा है। बचपन के सुपर हीरो शायद उसकी अंदरूनी ताकत की इच्छा थे, अब वो अपनी जिंदगी पर एक ग्राफिक नॉवल बना रहा है। ये उसके लिए अपने बिखरे हुए हिस्सों को जोड़ने, अपने दर्द को समझने और उसे कोई मतलब देने का तरीका है।
कहानी कहना एक तरह से विरोध का तरीका भी बन जाता है। हाँ, उन ताकतों के खिलाफ जिन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की। ये जिंदा रहने और आगे बढ़ने का रास्ता है, जैसा डेमन सोचता है। सवाल ये है कि क्या तुम वो बनना चाहते हो जिस पर हथौड़े पड़े और वो बस वैसा रह गया, या तुम वो बनना चाहते हो जिस पर हथौड़े पड़े और उसने सोचने का और चीजें बनाने का एक तरीका ढूंढ लिया।
तो उपन्यास का अंत कहाँ होता है? क्या डेमन पूरी तरह ठीक हो जाता है?
अंत कोई परिकथा जैसा नहीं है, पर उसमें एक उम्मीद है, नाजुक पर मजबूत उम्मीद। डेमन अब नशे से बाहर है, कम से कम उस वक्त। वो मिस्टर पेगॉट और एंगस के साथ रह रहा है, अपने पाए हुए परिवार के साथ।
और वो ग्राफिक नॉवल बना रहा है?
हाँ, वो जानता है कि जख्म शायद कभी पूरी तरह न भरे, पर वो जिंदा है और अपनी कहानी कहकर वो धीरे धीरे अपनी पहचान वापस पा रहा है, अपने अतीत पर काबू पा रहा है और भविष्य की ओर देख रहा है।
अगर हम पूरी कहानी को देखें तो किंग्सॉल्वर कई गहरे संदेश देती हैं। एक तो ये सिस्टम की नाकामी, फॉस्टर केयर, स्कूल, हेल्थ केयर, ये सब डायमंड जैसे बच्चों की मदद करने में नाकाम रहते हैं।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम अक्सर गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को नजरअंदाज करता है।
दूसरा बड़ा मुद्दा ओपियोइड संकट है
जी,
जिसे वो एक राष्ट्रीय त्रासदी की तरह दिखाती हैं, जिसकी जड़ें लालच और उपेक्षा में हैं। वो नशे को मानवीय चेहरा देती हैं
जी।
तीसरा, वो एपलाशिया की उन बनी बनाई छवियों को चुनौती देती हैं, वहां के लोगों की समझदारी, मुश्किलों से लड़ने की उनकी ताकत, उनकी संस्कृति को सम्मान देती हैं।
और इन सब के बीच कहानी कहने और कला की ताकत, डेमन के लिए ये जिंदा रहने का जरिया है।
और आखिर में इंसान का लचीलापन और पाए हुए परिवार का महत्व। डेमन की कहानी दिखाती है कि सबसे मुश्किल हालात में भी इंसान लड़ सकता है, जुड़ सकता है और मतलब ढूंढ सकता है।
उपन्यास का नरेशन स्टाइल डेमन की आवाज में, वो भी बहुत असरदार है। हाँ, फर्स्ट पर्सन नरेशन, डेमन की अपनी भाषा जिसमें एपलेशियन रंग है, वो आवाज कभी मासूम है, कभी कड़वी, कभी मजाकिया और अक्सर बहुत दर्द भरी। ये पाठक को सीधे डेमन की दुनिया में ले जाती है, उसके साथ हंसाती है, रुलाती है और गहरी सहानुभूति पैदा करती है।
और डेविड कॉपरफील्ड की संरचना का इस्तेमाल, ये सिर्फ कहानी का ढांचा नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। किंग्सॉल्वर इस तुलना से एक मजबूत तर्क देती हैं कि डिकेंस ने जिन सामाजिक अन्यायों को दिखाया था, बाल गरीबी, सिस्टम की नाकामी, कमजोरों का शोषण, वो आज भी मौजूद है। शायद रूप बदल गया है, पर वो है।
ये सोचने पर मजबूर करता है कि 150 साल में हमने कितनी तरक्की की है, खासकर सबसे कमजोर लोगों के लिए।
उपन्यास में प्रतीक भी बहुत है। कॉपरहेड सांप, खतरा, जिंदा रहना, गलत समझा जाना, समंदर, पलायन, नया जन्म, डेमन की ड्राइंग, अंदरूनी दुनिया, ताकत की इच्छा, ये सब कहानी को और गहरा बनाते हैं।
भावनात्मक रूप से तो ये उपन्यास झिंझोड़ देता है, गुस्सा आता है, दुख होता है।
हाँ, पर डेमन की जो कभी ना हार मानने वाली हिम्मत है और उसका जो ह्यूमर है बीच बीच में, वो हमें पूरी तरह निराशा में डूबने से बचाता है। ये सहानुभूति जगाता है और हमें मजबूर करता है कि हम सिर्फ खबरों और आंकड़ों से आगे जाकर उन इंसानी चेहरों को देखें जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं।
ये कहानी हमें वाकई गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे सामाजिक और आर्थिक सिस्टम लोगों की जिंदगियों पर असर डालते हैं और कैसे नज़रअंदाजी जानलेवा हो सकती है।
लेकिन साथ ही ये इंसान की हिम्मत, उसके लचीलेपन और सबसे मुश्किल हालात में भी उम्मीद, कला और रिश्तों के जरिए मतलब ढूंढने और अपनी आवाज उठाने की ताकत का जश्न भी है। ये याद दिलाता है कि हर कहानी सुनी जानी चाहिए।
और शायद यही सवाल है हमारे लिए भी, क्या हम आज अपने समाज के अनदेखे कोनों में पल रहे डेमन कॉपरहेड्स की कहानियों को सुनने और समझने के लिए तैयार हैं?
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।